हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया को लग रहा था पूरी की पूरी दुनिया झूठी है और उसकी ज़िंदगी इन झूठे मक्कार लोगों से भरी पड़ी है। जब से अरहम ने जोया को ये बताया था कि अबीर उसका सौतेला भाई है, तब से जोया खुद को लूटा हुआ सा महसूस कर रही थी। उसे अपने आप से, अपने जिस्म से एक घिन सी हो रही थी। इसलिए उसने पानी में घुसकर खुद को बेहद बुरी तरह से मसला था और फिर लगातार उसने सब कुछ याद करके अपने गालों पर चांटे मार लिए थे, जिससे उसकी उंगलियां उसके गालों पर छप चुकी थीं। जोया को इतना टूटा हुआ देखकर अबीर का दिल भी भर आया था। कहाँ वो अपने जख्मी दिल पर थोड़ा तन्हाई का मरहम लगाने उस बीच पर आया था और उसे बेहिसाब दर्द मिला था। जोया अब खुद को मार पीट कर थक चुकी थी और अबीर की बाहों में झूल गई थी। अबीर ने जोया को बड़े ही प्यार से उठाया और उसे पानी पिलाया। जोया अभी बदहवास सी हालत में थी। अबीर को देखकर वो उसे कह रही थी कि मुझसे दूर रहो, लेकिन अबीर उसके घुटनों के पास ही बैठ गया था। जोया खाली खाली नज़रों से उसे देखे जा रही थीं। अबीर भी उसे ही देख रहा था। उस वक्त उन दोनों की आंखों का दर्द साफ देखा जा सकता था। जोया थोड़ा सा बेटर फील करने लगी थी। उसे भागने और खुद को तकलीफ देने से जो थकावट हुई थी, वो थोड़ी देर बैठने की वजह से अब कम हो चुकी थी। जोया को जैसे ही थोड़ा आराम मिला, वो वहां से उठकर जाने लगी थी, लेकिन अबीर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। जोया कमजोरी तो काफी महसूस कर ही रही थी, अचानक अबीर के द्वारा खींचे जाने से वो एकदम से अबीर के सीने से जा लगी थी। अबीर ने कुछ पल उसे सहलाया। जोया की आंखें बंद थी उस वक्त। उसे किसी सुकून की जरूरत थी, जो जोया को अबीर की बाहों में बखूबी मिल रहा था। लेकिन जैसे ही एक बार फिर अरहम के द्वारा कही हुई बात कि अबीर उसका सौतेला भाई है उसके कानों में गूंजी, वो एक झटके से अबीर से दूर हो गई थी। अबीर उसे हैरानी से देखने लगा था। वही अरमान तीन दिन से अपने घर नहीं गया था, जब से उसे ये पता चला था कि जोया मिल चुकी है, लेकिन उसका भाई उसे इस बारे में कुछ नहीं बता रहा था। ये बात उसे खाए जा रही थी। सो उसने वहाँ रहकर दिन रात अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करना शुरू कर दिया था और उसने इस तरह से अपना काम किया कि जल्द ही सब कुछ अपने अंडर में कर लिया था और अपने सभी ऑफिस के लोगों को सब काम समझा दिया था, क्योंकि वो शुरू से नंबर वन था और ना जाने उसे अमेरिका में कितना समय लगने वाला था, और इसलिए वो अपने काम को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने दिन रात मेहनत करके अपना सब काम सेट कर दिया था। वही दूसरी ओर अरमान के तीन दिनों तक घर ना आने का राजवीर ने भरपूर फायदा उठाया था। राजवीर ने कितने ही सालों तक अपने मुंह पर शराफत का मुखौटा पहन रखा था और जब से उसकी शराफत हटी थी, तब से उसने अपनी सारी हदें पार कर रखी थी। मेहर को उसने अपना खिलौना बना लिया था। जब भी वो स्ट्रेस में होता या खुश होता, दुखी होता, हर सिचुएशन में वो मेहर का यूज़ किया करता था। अब शमशेर सिंह जी ने उसे अनुराधा के मर्डर केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था। ये बात राजवीर को बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि आज तक राजवीर ने जितने भी केस सॉल्व किए थे, आज तक उसके अंकल शमशेर सिंह जी ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया था। लेकिन आज क्यों वो उस पर शक कर रहे हैं, वो ये बात समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंकल शमशेर सिंह ने राजवीर की तरह ही एक इंटेलिजेंट एजेंट को अनुराधा का केस सौंप दिया था, ना जाने क्यों। लेकिन अब शमशेर सिंह को राजवीर पर भरोसा नहीं था, इसलिए बिना राजवीर को बताए उन्होंने अभिराज खुराना को अनुराधा का केस दे दिया था, वो भी सीक्रेटली। वेल, हर रोज की तरह राजवीर ने मेहर को हॉल में ही पकड़ रखा था और हॉल में पड़े उस सोफे पर ही वो उसके साथ अपनी पूरी मनमानी कर रहा था। राजवीर ने मेहर को इतना बुरी तरह से किस किया था, बेहद बुरी तरह, जिसके कारण मेहर के लिप्स सूज चुके थे, और हर रोज राजवीर की जबरदस्ती ने उसे किसी लायक नहीं छोड़ा था और वो पहले की तरह होने लगी थी। बस अब कुछ कोई दिन ही जा रहा था उसके पागल होने में। हर रोज की मारपीट और जबरदस्ती ने उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी और डरावनी कर दी थी। मेहर की आंखों के गहरे काले घेरे उसके साथ हो रही नाइंसाफी की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। उसका पूरा जिस्म अब बेजान सा होता जा रहा था। हर रोज की तरह मेहर के जिस्म को अच्छी तरह से छलनी करने के बाद राजवीर उठा और अपने कपड़े पहनने लगा था। राजवीर ने केवल अपनी पैंट ही पहनी थी और मेहर ऐसे ही बिल्कुल न्यूट पड़ी हुई थी। तब राजवीर मेहर के पास गया और उसे कपड़े पहनाने लगा था। मेहर ने अभी पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे कि तभी दरवाजे पर अरवान ठाकुर वहां आ पहुंचा था और घर में घुसते ही उसकी पहली नज़र मेहर पर ही पड़ी थी। जब से अरमान लोनावला से आया था तब से अब तक वो मेहर से नहीं मिला था और आज पूरे 7 दिन बाद उसने मेहर को देखा था। अरमान ने जैसे ही मेहर को देखा उसके कदम वहीं जम से गए थे। अरमान कभी एक नज़र मेहर को देखता तो कभी उसे कपड़े पहना रहे राजवीर को देखता। अरमान एकदम पत्थर सा हो गया था। अरमान को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर पूरा का पूरा आसमान टूट गया हो। हुआ यूं था, अरमान अपने फॉर्म हाउस में जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहा था और ऑलमोस्ट उसका काम पूरा भी हो चुका था और बिना देरी किए उसने कल रात के ही अमेरिका जाने के लिए अपने टिकट बुक कर लिए थे और उसने सोचा सुबह ठाकुर मेंशन जाकर वो मेहर आपी से अमेरिका जाने के बारे में बता देगा और कपड़े वगैरह पैक करा लेगा। ये सोचकर वो अपने बिस्तर पर लेट चुका था और सोने की कोशिश करने लगा था और अरमान धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा था। अरमान को उस वक्त किसी का फ़ोन आना बेहद नागवार लगा था, लेकिन शायद कोई इमरजेंसी हो ये सोचकर उसने फ़ोन उठा लिया था और हेलो बोला। तभी दूसरी ओर से एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, हेलो अरमान साहब, कैसे हैं आप? अरमान किसी को अपने साथ इतना बेतकल्लुफ़ होता देख चौंक गया था, क्योंकि उसने कभी भी किसी को इतना हक नहीं दिया था कि वो अरमान ठाकुर से इस लहजे में बात कर सके। तभी अरमान थोड़ा चिढ़कर बोला था, तू है कौन जो इस वक्त अरमान ठाकुर की नींद खराब करने की कोशिश कर रहा है? शायद तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। तभी दूसरी ओर जो आदमी था वो जोर जोर से हंसने लगा था और इतरा कर बोला था, अरे अरे अरमान साहब, आप तो बुरा मान गए। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था और ना ही आपको नाराज करने का, वो भी आपको। नहीं नहीं अरमान साहब, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं भला कहाँ आपकी नाराजगी मोल ले सकता हूँ। तब अरमान गुस्से से तप गया और बोला, जो कहना है जल्दी बोल वरना फ़ोन रख, मेरा समय बर्बाद मत कर, समझा तू? तब वो आदमी, हाँ हाँ अरमान साहब, मैं जानता हूँ आप कितने व्यस्त आदमी हैं, तभी तो अनुराधा सेठी को भी आपने जल्दी जल्दी में मार गिराया था।
अरमान उस कॉलर के मुँह से अनुराधा और उसके मर्डर का नाम सुनकर एकदम से सुन हो गया था और अरमान ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तब वो कॉलर बोला, अरमान साहब, मुझे सब कुछ कैसे क्यों पता चला, इस बात का छोड़िए, मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आप किसी की बेटी पर, बहन पर बुरी नज़र रखोगे तो हो सकता है उसका पार्श्वतप आपके घर की औरत को करना पड़े। और वो कॉलर लास्ट में बोला था, जाओ अरमान साहब, जाओ और जाकर बचा लो अपनी बहन को। इतना कहते ही उस कॉलर ने कॉल कट कर दिया था। प्राण पावत, प्राण पावत, प्राण पावत।